الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم. ایک مسلمان کے واسطے سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز اس کے عقیدے ہوتے ہیں. عقیدہ جس کو ہم گجراتی میں مانیتا کہتے ہیں, کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے. ایسا سمجھ لو کہ عقیدہ یہ جڑ ہے اور اعمال جو ہے وہ اس کی ٹہنیاں ڈالیاں اور شاخیں ہیں. اگر یہ عقیدے کی جڑ اچھی ہوگی, تندرست ہوگی, تو پھر یہ ٹہنیاں ڈالیاں سلامت رہے گی. اور عقیدے والی جڑ اگر سڑ جاوے تو اوپر جو ڈالیاں ہیں, پتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اسلام ایک درخت کی طرح اس کی مثال ہے. قرآن میں بھی ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. کہ ایک درخت ہے, كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً, بہترین درخت ہے, کا اصلحا ثابت, اس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہے, اور اس کی ڈالیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے, اور جب اس کی جڑ مضبوط ہیں تو ڈالیاں بھی مضبوط ہیں, اور ہر موسم میں اس پر پھل آتے ہیں. اور اگر یہ جڑ سڑ گئی تو اوپر ڈالیاں بھی سوکھ جائے گی. یہ کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال بیان فرمائی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک مسلمان کے عقیدے اگر صحیح ہوں گے تو اس عقیدے کے اوپر جو جڑ ہیں, اس پر جو ڈالیاں آئے گی اعمال کی, وہ اعمال بھی سلامت رہیں گے. اور اگر یہ عقیدے کی جڑ سڑ گئی تو اوپر اعمال کی ڈالیاں بھی سڑ کے نیچے گر جائے گی. اس لیے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, ان پیغمبروں کی پہلی اور سب سے بڑی محنت انسانوں کے عقیدے کے اوپر تھی کہ انسانوں کے عقیدے صحیح ہو جائے. کوئی عقیدہ تمہارے اندر غلط آنا نہیں چاہیے. سب سے بڑی محنت نبیوں کی انسانوں کے عقیدے کے اوپر ہوئی. اب عقیدہ جب اتنی اہم چیز ہے تو یہ محرم کی نسبت سے کچھ چیزیں ہمارے اندر غلط گھس گئی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں, دیندار سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی عقیدے کی لائن کی کچھ غلط چیزیں ہمارے اندر گھس چکی ہیں. کا محرم کا مہینہ آئے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ یاد کرتے ہیں, ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں, ये जो एक चीज है कि मुहर्रम का आना हजरत हुसैन को याद करना, ये सुन्नत पर चलने वालों की सोच नहीं है, ये शियो लोगों की सोच है। ये सुन्नत पर चलने वालों का अकीदा नहीं है, ये शियो की तरफ से हमारे अंदर आया हुआ है। इसलिए कि मुहर्रम के अंदर हजरत हुसैन की शहादत का किस्सा तो बहुत छोटा है, अगरचे बहुत बड़ा गम का वाकया, अल्लाह के नबी के नवासे की शहादत बहुत बड़ा गम का किस्सा, लेकिन इससे भी बड़े बड़े किस्से मुहर्रम में दुनिया में हुए हैं आशुरा में। आपको मैं सिर्फ लिस्ट गिनवा देता हूं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तोबा आशुरा के दिन कबूल फरमाई, मुहर्रम की दसवीं तारीख को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए मुहर्रम की दसवीं तारीख को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया मुहर्रम की दसवीं तारीख को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद की आग ठंडी हो गई मुहर्रम की दसवीं तारीख को। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी मुहर्रम की दसवीं तारीख को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिये से पार हो गए मुहर्रम की दसवीं तारीख को। फिरौन डूब गया मुहर्रम की दसवीं तारीख को। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में से बाहर आए मुहर्रम की दसवीं तारीख को। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारियां खत्म हो गई मुहर्रम की दसवीं तारीख को। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर तशरीफ ले गए मुहर्रम की दसवीं तारीख को। और कयामत आएगी मुहर्रम की दसवीं तारीख को। अब इतने बड़े बड़े वाकियात मौजूद हैं, उन तमाम किस्सों को भुला करके एक हजरत हुसैन की शहादत को याद करना, ये सुन्नियों का तरीका नहीं, ये शियों का तरीका है। और अफसोस तो हमें इस बात के ऊपर होता है कि हमारे सुन्नी तबलीगी देवबंदी कहलाने वालों की मस्जिदों में पोस्टर लगे हुए इमाम हुसैन की याद के अंदर। अब सुनो, अकीदा में आपको बतलाऊं, ये इमाम लफ्ज हजरत हुसैन के साथ लगाना ये शियों का अकीदा है। और शियों के यहां 12 इमाम का तसव्वुर है कि वो 12 इमाम मानते हैं, इसलिए उनको शिया इसना अशरिया कहा जाता है। इसना अशर अरबी में 12 को कहते हैं। और ये जो 12 इमाम मानते हैं शिया लोग, तो उन इमामों का दर्जा पैगंबर से भी ऊंचा मानते हैं कि नबी से भी आगे इमाम का दर्जा है। हालांकि हम सब का अकीदा ये है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह के नबियों का है। पहला मकाम अल्लाह का, फिर पैगंबरों का, और उसके बाद सहाबा का। ये इमाम का अकीदा शियों के यहां चलता है। और शियों के ऐसे गलत गलत अकीदे कि इमाम मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। हालांकि हमारा अकीदा ये कि नबी के सिवा कोई मासूम नहीं है, सिर्फ नबी मासूम, उसके सिवा कोई मासूम नहीं। अब ये शियों के यहां से अकीदा हमारे यहां घुस गया कि इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन कोई चीज नहीं, कहो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये इमाम शियों के यहां से आया और ये दो खराबी लेकर आया कि इमाम मासूम होते हैं। हम कहते हैं कोई इमाम मासूम नहीं होता, मासूम सिर्फ नबी होते हैं। और दूसरी खराबी ये कि इमाम का दर्जा नबी से भी ऊंचा, हम कहते नहीं हो सकता, इमाम का दर्जा बहुत नीचे होता है नबी के मुकाबले में। अब ये कितनी गलत चीज हमारे अंदर आ गई, ये सोचो। ये अकीदा है जो हमारे जड़ को खोखला बना रहा है। और फिर आगे क्या होगा कि हम सब का अकीदा ये होना चाहिए कि नबी के बाद सबसे ऊंचा दर्जा सहाबाए किराम का, और सहाबाए किराम में सबसे ऊंचा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का, और दूसरा नंबर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का। अब हजरत उमर की जो शहादत है वो भी मुहर्रम के महीने में हुई, हजरत उमर की शहादत भी मुहर्रम में हुई, लेकिन कोई मुसलमान नहीं जानता है न उनको याद करता है। हालांकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक नबी होते। इतना ऊंचा मकाम हजरत उमर का, और उनकी शहादत भी मुहर्रम में हुई, लेकिन कोई उनको याद नहीं करता है, और याद करेंगे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को। ये शियों में से ये चीजें घुसी है हमारे अंदर, और फिर उसमें आगे चलेंगे, और इतना आगे चलेंगे। अब ये जो रोजे हैं, रोजे के लिए ये फजीलत की हदीसें लिखी हुई है, ये फजीलत हजरत हुसैन की शहादत से कोई ताल्लुक नहीं रखती। हदीस के अंदर आता है कि न मक्का के अंदर कुरैशी लोग मुहर्रम के दिन रोजा रखते थे, तो हुजूर ने कुरैशियों से पूछा कि तुम क्यों रोजा रखते हो, तो कुरैशियों ने जवाब के अंदर कहा कि आज वो दिन है कि नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, और आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत निकल आए, उस शुक्राने के अंदर हम लोग रोजा रखते हैं। अब ये रोजे की फजीलत का हजरत हुसैन की शहादत से कोई ताल्लुक नहीं। कहां हजरत इब्राहिम का जमाना, कहां हजरत हुसैन का जमाना। हुजूर हिजरत करके मदीना गए, तो मदीना में सब यहूदी लोगों ने रोजा रखा था। अब हुजूर ने पूछवाया कि तुम यहूदियों ने आज रोजा क्यों रखा, तो यहूदियों ने क्या जवाब दिया कि आज वो दिन है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम दरिया में पार हो गए थे और फिरौन डूब के खत्म हो गया था, तो अल्लाह के शुक्राने के अंदर हम लोगों ने रोजा रखा हुआ है। अब कहां मूसा अलैहि सलाम पर अल्लाह की मदद हजारों बरस पहले, और कहां करबला का वाकया। इस रोजे का करबला के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये यहूदी लोग रोजा रखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की याद में, तो हम तो ज्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, हम भी रोजा रखेंगे। और फिर जब जिंदगी का आखिरी साल था, तो इरशाद फरमाया कि ये यहूदी लोग एक रोजा रखते हैं, और हमको यहूदियों से हर काम में दुश्मनी रखनी, हर काम में इनका विरोध करना है। वो एक रोजा रखते हैं, हम दो रोजे रखेंगे। लेकिन हुजूर का उसी साल इंतकाल हो गया, उस साल की मुहर्रम में हुजूर को रोजा रखने का वक्त नहीं मिल सका। अब आप अंदाजा लगाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की तरगीब दी और फरमाया कि आशूरा के रोजे की बरकत से पिछले साल के अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देते हैं। यह है हदीस के अंदर, लेकिन इसका करबला के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हजरत हुसैन की शहादत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक मूसा अलैहि सलाम के साथ है। अब आप अंदाजा लगाओ कैसी गंदी और गलत सोच शियों में से आकर हमारे अंदर बैठ गई, क्योंकि ये शिये लोग नऊज़ु बिल्ला हजरत उमर को काफिर कहते हैं, और यूं कहते हैं कि हुजूर के दुनिया से जाने के बाद हजरत उमर नऊज़ु बिल्ला मुर्तद हो गए थे। आज कौन मुसलमान ये अकीदा रख सकता है, बोलो। तो उन्होंने जानबूझ करके हजरत हुसैन की शहादत को उछाला और हजरत उमर की शहादत को छुपा दिया है, अपने अकीदे के वास्ते, अपने गंदे अकीदे को दुनिया में चलाने के वास्ते। अब कोई मुसलमान हजरत उमर को याद नहीं करता, सब हजरत हुसैन के नाम की तस्बीह पढ़ते हैं। हालांकि ये जो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया पेश आया, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बहुत बरसों के बाद, बहुत बरसों के बाद, इतने बड़े बड़े वाकयात होने के बाद इत्तेफाक ये हुआ कि मुहर्रम की दसवीं तारीख को हजरत हुसैन की भी शहादत हो गई। देखो, हजरत हुसैन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उनको मानते हैं कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन होंगे, हम मानते हैं। हजरत हुसैन हमारे बड़े हैं, हमारे रहबर है, हमारे पेशवा है, लेकिन अकीदा अकीदा है कि सारी चीजें हजरत हुसैन की याद में, बाकी सबको भुला दो, ये गलत बात है। इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि मुहर्रम के नाम पर बहुत सारी चीजें हमारे अंदर गलत दाखिल कर दी गई है। तो मुहर्रम की जितनी फजीलत है उस फजीलत का ताल्लुक हजरत हुसैन की शहादत से हरगिज नहीं है। बहुत सारे किस्से पहले हो चुके, कयामत भी इसी 10 मुहर्रम को दुनिया के अंदर आएगी। और याद रखो मेरे दीनी भाइयों, जहां ईमान और तौहीद कमजोर होती है वहां पर शिर्क घुसता है। जहां तौहीद कमजोर हो गई शिर्क घुसने लगता है। चुनांचे मुसलमान आगे बढ़े यहां तक के इतने आगे बढ़े कि ताजिए बनाने शुरू कर दिए। हालांकि ये ताजिए बनाना कोई सुन्नी मुसलमान का काम नहीं हो सकता है। कोई सुन्नत से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान ये काम नहीं करेगा, ये शियों का काम है। एक बहुत बड़ा शिया राजा था हिंदुस्तान में, तैमूर लंग नाम का, वो लंगड़ा था। अब वो था शिया, और जब वो इराक में था तो हर साल मुहर्रम के दिनों में वो करबला जाता था। अब वो हिंदुस्तान में आया मुहर्रम के दिनों के अंदर, तो यहां से कैसे करबला जावे, तो उसने वहां रोजे मुबारक की तस्वीर बनवाई और उसने ताजिए की शुरुआत करवा दी। और फिर ये शिर्क चल पड़ा, अब उसमें बुराक की तस्वीरें बनती है, जिब्राइल का फोटू बनता है, पता नहीं कितने शिर्क आते हैं। जहां ईमान कमजोर हुआ वहां शिर्क घुसना शुरू हो जाता। और देखो बहुत सारी रिवायतों से ये मजमून निकल सकता है कि आशूरा के दिन अपने घर वालों के लिए कुछ रोजी में वसअत करनी चाहिए, यानी उनको अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए, उनको अच्छी तरीके से रखना चाहिए, मुहर्रम के दिन जो है हमें रोजा रखना चाहिए, ये साबित है। लेकिन आशूरा का दिन है इसलिए कहा शरबत पिलाओ, बच्चों को शेरनी तकसीम करो, ये सुन्नत का काम नहीं है, ये सुन्नत का अमल नहीं है। लोग क्या करते हैं, शरबतों की सबीले लगाते हैं, शिरनियां तकसीम करते हैं, और एक तरफ करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के हालात में है कि हजरत 3 दिन दुश्मनों ने प्यासा रखा था, प्यासे रहे, मासूम मासूम बच्चों के लिए भी पानी बंद कर दिया गया, बच्चों के लिए भी पानी की पाबंदी थी, खानदान नबूवत के छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन दुश्मनों की तरफ से पानी बंद था, खाना भी बंद था, भूखे प्यासे वो करबला के मैदान में तड़प रहे, तरस रहे, और हम उनके नाम के ऊपर शरबत पी रहे। अब कितनी बड़ी दूरी है सोचने की चीज कि उन्होंने तो प्यासे रह करके शहादत की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए प्यासे रह करके, उनके मासूम मासूम बच्चे प्यासे रहे, औरतें प्यासी रही, और मुसलमान है कि उनके नाम पे शरबत पीते। अब बतलाओ ये इंसाफ है कि जुल्म है, ये गलत चीजें हमारे अंदर घुसी हुई है मुहर्रम और आशूरा के नाम के ऊपर। इसलिए बहुत अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत है कि आशूरा की मुहर्रम की फजीलत का ताल्लुक हजरत हुसैन की शहादत से नहीं है। दुनिया में इतिहास में 500 बड़े बड़े वाकियात मुहर्रम की 10वीं तारीख को हो चुके हैं, और कुदरती बात हजरत हुसैन की शहादत मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुई, ये कुदरती बात है। और रोजा रखना जो फजीलत है इस फजीलत का ताल्लुक भी हजरत हुसैन की शहादत से नहीं है। ये तो हजरत मूसा अलैहि सलाम के ऊपर जो अल्लाह की नेमत हुई उस नेमत के शुक्राने के अंदर है, वो भी पूरी अलग चीज है। और मुसलमान भूल से भी हजरत हुसैन के लिए इमाम का लफ्ज बोलना ये हरगिज मुनासिब नहीं है, ये भी गलत लफ्ज है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिसकी तरफ आज हमारे मुसलमानों का ध्यान और तवज्जो नहीं है। अल्लाह सुबहानहू व ताला का फरमान है कुरान करीम के अंदर कि देखो शिर्क तुम्हारे ईमान के अंदर आने न पावे, तुम्हारी तौहीद, तुम्हारा ईमान, पक्का और मजबूत रहे, उसके अंदर गलत चीजें ना घुसने पाए। इसको दिल के अंदर लिख लो, जहां ईमान और तौहीद कमजोर होगी वहां शिर्क जिंदगी के अंदर आएगा, और जहां सुन्नत छूटेगी वहां जिंदगी के अंदर बिदात आएगी। जहां सुन्नत निकली जिंदगी में से वहां फौरन बिदात जिंदगी के अंदर आकर के बैठ जाएगी। बल्कि अजीब बात तो यह है कि हम मुसलमानों को अपने इतिहास को समझने की और पढ़ने की भी जरूरत है। आज हम पढ़ते ही नहीं चीजों को, क्या मुसलमानों का इतिहास रहा, क्या हमारी हिस्ट्री रही और कैसी हमारी जो है तारीख रही, ये सब चीजें जानेंगे तो इंशाल्लाह ये सब गलत चीजें जिंदगी के अंदर से निकल जाएगी। चुनांचे लखनऊ के अंदर बहुत ताजिए होते हैं, तो अंग्रेजों के जमाने के अंदर ताजिए का जुलूस निकला है, तो उसमें ये लोग कपड़े फाड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो एक अंग्रेज अफसर तमाशा देख रहा था, गवर्नर, उसने पूछा कि ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों कपड़े फाड़ रहे हैं। तो कहा आज 10 मुहर्रम है और हमारे नबी के नवासे की करबला के मैदान में शहादत हुई थी, उसकी याद के अंदर ये लोग रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। तो अंग्रेज लोग तो बहुत होशियार होते हैं, उसने कहा इनको यूं पूछो कि वहां करबला में ये किस्सा कब हुआ था। तो कहा वो तो 1400 साल पहले हुआ था। तो कहा लखनऊ खबर आज पहुंची है, आज तक लखनऊ वालों को खबर ही नहीं थी कि आज रोने बैठे, इतने साल तक उनको कभी खबर ही नहीं हुई इसकी। यानी उसने टोन मार करके हमको अकीदा समझाया कि 1400 साल गुजरने के बाद भी तुम लोग अभी वही तमाशे कर रहे हो। एक अंग्रेज हमको टोन मार के समझा रहा है। इसलिए बहुत जरूरत है कि हमारे अंदर जो ये सब चीजें गलत घुसी हुई है हम उसको सही तरीके से समझे और इस गलत चीज को हम अपने अंदर से निकालें। ये शिर्क की चीज, गलत सोच, गलत समझना। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि नबी से फरमा रहे कि आप कहो का कुल हाजी ही इसबीली, ये मेरा रास्ता है तौहीद का, ईमान का। अदउ इलल्लाह अला बसीरा, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूं बहुत समझ के साथ। दीन की दावत में बहुत समझ की जरूरत। आदमी ऐसे वैसे जो चाहे वो लोगों को नहीं बतलाता फिरे। अदउ इलल्लाह अला बसीरा, अना व मनी तबानी, मैं भी और मेरे सहाबा भी, वो सब ईमान और तौहीद में मजबूत। हुजूर फरमाते हैं फसुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात शिर्क से पाक है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं भी शिर्क नहीं करता हूं, ये हुजूर ने ऐलान फरमा दिया। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, हमारे अकीदे सलामत रहे, हमारी सोच सलामत रहे, हमारी समझ सलामत रहे और हम दीन को सही तरीके से समझे, इसकी हमारे लिए बहुत जरूरत है। ये मुहर्रम के मुतालिक मैंने ये चंद बातें आपको अर्ज की, जो गलत फहमी हमारे माहौल में आम है उसको दूर करने की नीयत से अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और सही समझ करके सही अमल करने वाला अल्लाह ताला हमको बना दे। देखो हमारा दीन तो बहुत समझदारी वाला दीन है। मैं आपको एक मिसाल दूं, नमाज पढ़ना कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है नमाज पढ़ना। लेकिन एक सवाल मैं आपको करूं, कोई आदमी जवाल के वक्त नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए तो उसको सवाब मिलेगा कि अल्लाह के यहां गुनहगार होगा? गुनहगार होगा। इसलिए कि 3 वक्त पर नमाज पढ़ने को मना किया गया, सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है और जवाल हो रहा है, का नमाज नहीं पढ़ सकते। अब कोई आदमी उसी वक्त नमाज पढ़ने लग जाए, उस नमाज पे नेकी नहीं मिलेगी, नमाज पर गुनाह होगा। इसलिए हुजूर ने साफ फरमाया कि तरीका वो होगा जो मेरा तरीका है। नमाज तक के लिए इरशाद फरमाया कि नमाज भी तुम अपनी मर्जी से पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, मेरी नमाज जैसी वैसी नमाज पढ़ो। एक सहाबी आए, हुजूर उनकी नमाज देख रहे, उन्होंने नमाज पढ़ी, सलाम फिराया, हुजूर ने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, इर्जी फसल्ली फैन कलम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। वो सहाबी गए फिर नमाज पढ़ी, हुजूर ने फरमाया कि नहीं अभी भी नमाज नहीं हुई, इर्जी फसल्ली फैन कलम तुसल्ली, نماز پڑھو تمہاری نماز. تین مرتبہ ایسا ہوا. تب اس صحابی نے کہا حضور بتلائیے میں کیسے نماز پڑھو. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مرغا دانا کھاتا ہے نا, کیسے چانچ مارتا ہے دھڑا دھڑ پھٹافٹ, ایسے رکو سجدے مت کرو, اطمینان سے رکو سجدہ قیام قوما کرو. اور پھر حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا سلو کما رئی تمونی اسلی, میرے جیسی نماز پڑھو گے تو وہ نماز نماز ہوگی, باقی میرے جیسی نماز نہیں ہوگی تو اللہ نماز کو بھی ٹھکرا دیں گے. جب نماز میں یہ حکم ہے کہ نبی جیسی نماز ہوگی تو اللہ کی یہاں قبول ہوگی, تو باقی دوسری چیزوں کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں. حج جیسی حج, حج کے اندر حضور نے کیا فرمایا, اے میرے صحابہ خزو انی مناسککم, حج کیسے کرنی وہ سیکھ لو اور میں جیسے کرتا ہوں ویسے حج کرو تو حج ہوگی, باقی میرے طریقے سے کرو گے الگ طریقے سے تمہاری حج اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے عقیدہ عمل سب حضور کے طریقے کے اوپر ہونا چاہیے تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا, ورنہ مقبول ہوگا نہیں. اس لیے آدمی کو خود مفتی نہیں بن جانے گا کہ میری سمجھ میں میری عقل میں جو آیا وہ صحیح اور ایک آدھ دو لیٹی میں پڑھ لوں وہ صحیح نہیں, کسی دیندار سے جاننا چاہیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آج تو تکلیف یہ ہے کہ امت کا ہر مسلمان مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو دیندار اور دینی مسائل کی آتھورٹی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مول صاحب ایسا مسئلہ عام طور پر لوگ کرتے کیا ہے, پہلے کریں گے بعد میں ہم کو پوچھنے کے لیے آتا ہے. یہ امت کی مزاج کی بگاڑ کی بات ہے. دین کی کوئی بھی بات جب تک ہم معلوم نہ کر لے وہاں تک نہ عمل کرنا نہ دوسرے کسی کو بتلانا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے عقیدے اپنے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور بدعات شرک رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, پکی توحید اور پکی سنت پر اللہ ہمیں چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.